परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया, 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
रामदास, मैं वहां से ये सतनाम और सार शब्द की शक्ति लेकर चला, अपने को छुपाते हुए और उस अज्ञान आत्मा में अपना प्रवेश करने के लिए शुरुआत करते हैं। फिर धर्मदास मैं बताऊं कहां आया। मैं वहां पर आया जहां पर 1 लाख जीवों को और ये काल बलि भून रहा था, तपतशिला पर जल रहे थे। काल भगवान को मालूम होता है कि जब ये प्राणी बिल्कुल इनमें से वो अंश निकल जाएगा उसके बाद वो तपतशिला से उड़ जाते हैं। वहां से उड़कर वो प्राणी कहां जाते हैं, अपने अपने कर्म के आधार पर। फिर दंड अपने कर्म के आधार पर, अपने कर्म भोग के लिए न्यायाधीश यानी धर्मराय, जो भगवान ब्रह्म ने ज्योत निरंजन ने एक न्यायाधीश एक धर्मराज बना रखा है, उसके पास जाते हैं। वहां फिर कर्मों के आधार पर किसी को अच्छे कर्म है स्वर्ग भेज देगा और जिसके माड़े कर्म उनको नरक। फिर 84 लाख जोनियों में ऐसे इनकी फिर ये दुर्गति शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट डे अगले दिन 1 लाख का फिर आहार, ऐसे ये प्रक्रिया रोज चले। तो धर्मदास जब मैं वहां पर आया तो सभी प्राणी उस आग की जलन से ऐसे बुरी तरह तड़प रहे, हाहाकार मचा रहे हैं और कह रहे हैं कोई परमात्मा है सर्वशक्तिमान है तो हमारी रक्षा करो, हमें बचाओ भगवान। वहां पर ऋषि लोग भी कहते हैं मैंने 1000 वर्ष साधना की भगवान की, मुझे क्या आडे आया, आज मुझे क्या लाभ हुआ है मालिक, ये क्या बनी मेरे साथ, मैंने ऐसा क्या जुल्म किया दाता जो मुझे ऐसी सजा दी जा रही है। कोई कहता मैंने 4 वेदों को कंठस्थ याद किया, रोज स्वाध्याय करता था। कोई कहता मैं गीता पढ़ता था प्रतिदिन और फिर भी मैं तपतशिला पे, मैं क्यों भूना जा रहा हूं, मुझे क्यों कष्ट मिल रहा है। कबीर साहब कहते हैं धर्मदास मैं वहां जब पहुंचा साहेब की कृपा से, परम पिता की कृपा से, सतपुरुष की कृपा से, अपने से नहीं कह रहे, वो स्वयं लीलाधारी मालिक थे, कुल परमात्मा थे। कहते हैं जब वहां पहुंचा उस तपतशिला के ऊपर तो धर्मदास उस शब्द की कृपा से, शक्ति की कृपा से यानी मेरी शक्ति था, उनकी वो जलन निष्क्रिय होगी, वो टुकड़ी तो दहक रही है, वो तो यों की यों गर्म लग नजर आ रही है लेकिन उन जीवों को वो गर्म नहीं लग रही, साहिब की कृपा है, कबीर साहिब की रजात है। जब उनको जलन होना बंद हुआ तो वो होश में आते हैं और मेरे को जब सामने देखें और देखकर कहते हैं परमात्मा आप कौन है, मैं तेज कृष्ण कहते ये मालिक आप कौन हैं और हम यहां किस कर्म का भोग भोग रहे हैं। वहां पर कबीर साहब कहते हैं भाई ये तो बिना कर्म का भोग तुम्हें प्राप्त है, ये कोई कर्म का दंड नहीं है, ये बिना कर्म का। तुम जिस भगवान की साधना करते थे निराकार कह के, वहां पर हिंदू और मुसलमान ये इकट्ठे ही होते हैं, सिख और ईसाई, जिनकी सच साधना नहीं है। तो वहां सभी कहते हैं कि मैंने तो अपने धर्म के आधार पर बहुत अच्छी साधना की थी, हे परमेश्वर मैं भी क्यों दुख पाया। साहब ने कहा कि सत साधना का ना तो हिंदू धर्म में पूर्ण प्रचार और ना ही मुसलमान धर्म में, ना सिख धर्म में, ना ईसाई में। सत साधना भाई मैं बताऊं मेरी तुम सुनते नहीं, तुम मेरे बच्चे हो सारे, के हिंदू हैं के मुसलमान, सिख या ईसाई, किसी जाति या मजहब के, ये तो काल ने तुम्हारे ऊपर एक न्यारा न्यारा एक जोरडक्शन बनवा दी और जो तुम्हें दुख का मूल कारण है। तुम मेरे बच्चे हो, तुम सतलोक में रहते थे भाई, और सतलोक से तुम सभी यहाँ पर अपनी कमजोरी पे आप ही आ गए। अब जब तक तुम सतलोक नहीं पहुंचोगे तुम सुखी नहीं हो सकते। ठीक है, जिसने हजार वर्ष साधना की है, ओ मंत्र का जाप किया है, वेदों के आधार से वेदों के बिल्कुल अनुकूल किया है साधना, उसको भी परमात्मा प्राप्ति नहीं, यही गीता जी ने प्रमाण दिया है। 11वें अध्याय का 47 और 48 श्लोक में खुद भगवान ब्रह्म काल कह रहा है कि अर्जुन मेरी प्राप्ति जो रूप मैंने आपको दिखाया है ये मेरा असली रूप है, काल का वो वास्तविक रूप है। ये ना तो वेदों के अनुसार साधना से प्राप्त हो सकता, ना तप से, ना दान से, इसका प्रतिफल स्वर्ग, महास्वर्ग, राजा और फिर 84 लाख। यही प्रमाण गीता के दूसरे अध्याय में कहा है कि अर्जुन जन्म मरण ना तो तेरा मिटा और ना मेरा मिटा और ना ही मिटेगा। कर्म के आधार पर ये प्राणी अब भी पैदा है, आगे भी होगा और पहले भी थे हम सभी। और वास्तव में अगर तुझे जन्म मरण से छुटकारा पाना है तो सतलोक उस पूर्ण परमात्मा की साधना करके चला जाए। ऐसा ही गीता में लिखा है जैसे मैं आपको बता रहा हूं। इस बात को वो सभी ध्यान पूर्वक सुन रहे क्योंकि उस समय तो वो कष्ट में थे। यहाँ पर तो कोई नहीं सुनेगा भगवान की बात को, क्यों, यहाँ तो सभी अपने अपने कर्म आधार पर, कोई सुखी है, किसी के पास कार है, किसी के पास कोठी है, और श्याम ने अपना कोई फील खाकर सो जा, कोई गुटी दारू की पीकर सो जा है, करके सुबह रंधे लग जाए। अब किसी ने परवाह को ना कि आगे क्या बनेगी, आगे की जो समस्या है उसको आगाह करने की खातर, उसको बताने के लिए कबीर साहब स्वयं आते हैं या अपने किसी दास की ड्यूटी लगाते हैं और फिर वो साथ रहते हैं। जब जाकर के इस गुरु की बुद्धि परमात्मा के अंदर दृढ़ बनती है तो वहां कहते हैं भगवान हमने तो बहुत पूजा करी। तो कबीर साहब ने कहा कि जो पूजा तुमने की उनका लाभ अवश्य मिलेगा लेकिन तुम्हारा जन्म मरण नहीं मिटेगा। स्वर्ग नरक 84 लाख दुनिया तुम्हारी कभी समाप्त नहीं होंगी, ना वेदों के अनुसार साधना से और ना ही पुराण या पवित्र बाइबल के आधार से। मुक्ति योगी पूर्ण संत जो सतलोक का जानने वाला हो, पूर्ण परमात्मा के बारे में जानने वाला हो, उनको आदेश हो नाम देने का। चौथे अध्याय के 33, 34 और 35 श्लोक में गीता जी के भगवान काल ब्रह्म कह रहा है कि अर्जुन तुम इस परम पिता परमात्मा के पूर्ण ज्ञान के जानने वाले संतों के पास जाओ, उनको नमस्कार कर, दंडवत प्रणाम करें, उनकी सेवा करें और फिर उनसे बिल्कुल विनम्र होकर उस परमात्मा की जानकारी प्राप्त कर और उपदेश ले, फिर वो खुश होकर तुझे उस परम तत्व का ज्ञान देंगे, फिर तेरी रुचि यहाँ से हट जाएगी, तू पूर्ण मुक्त हो जाए। यहाँ भगवान ने नहीं कहा कि तुम मेरी शरण में आ जा मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। उन संतों को ढूंढ जो परम पिता पूर्ण परमात्मा का मार्ग तत्व से जानते और वहां जाकर उसे ज्ञान प्राप्त कर ले भाई, तेरा छुटकारा हो जाए। तो मेरा सबसे प्रिय है इसलिए मैं तुझे ये बताऊं, ये मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, इसी बात को तुझे कह रहा हूं, गीता में भगवान कह रहा है।
वो सभी प्राणी जो तपत शिला पर जल रहे थे धर्मदास, वो कहते हैं भगवान हमने छोटो आलो कालते हैं, हम तो बहुत परेशान हैं। कबीर साहब कहते अभी क्या है, अभी तुम गधे बनोगे, कुत्ते बनोगे, सूअर बनोगे, ये पहाड़ टूटना भी और बकाया है। कहता भगवान हमने बचा लो, हम पापी प्राणी हैं, हम आपसे दूर हुए क्योंकि साहब ने सारी कहानी बताई उनको कि भाई तुम सतलोक रहते थे, वहां मेरे पास रहते थे, वहां तुम्हें कोई दुख नहीं था, तुम मरते नहीं थे, वहां पर कोई कर्म दंड नहीं है। तो अच्छा जी, और यहां तुम भाई अपनी कमजोरी से आप उलझ गए। तो कहते हैं भगवान हमने बचाओ, हमें ले चलो सतलोक। नहीं भाई, कबीर साहब कहने लगे ऐसे नहीं बनेगा, जब तुम उस मृत लोक में जाओगे और वहां पर तुम्हें कर्म आधार पर कभी मनुष्य शरीर मिले, जब तुम्हें मनुष्य शरीर मिले और मेरा कोई संत इस सतलोक की महिमा गाने वाला और सतपुरुष का मार्ग बताने वाला जब मिल जावे, उससे सतनाम ले लेना, सतनाम ले लेना, और सतनाम लेकर फिर तो पूर्ण रूप से अपने गुरुदेव को एज ए गॉड परमात्मा के सम्मान मानकर उसके चरणों में लगा रहना, फिर मेरा काम है तेरे को यहां से छुटे। तब वो कहते भगवान अब के जब मनुष्य शरीर मिल गया ये दाता, हम आप ही का भजन करेंगे। मनुष्य शरीर तो बहुत मिले लेकिन इस काल भगवान ने यहां पर सब जीवों को अपना ही ज्ञान दे करके अपने में ही सीमित कर लिया, उन परमात्मा के ज्ञान को दिया जो वेदों में और वेता जी ने, पर उसके पाने की विधि नहीं दी, वहां पहुंचने का तरीका नहीं दिया, इसलिए ये ज्ञान भी हो गया उन महापुरुषों को वेदों के पढ़ने तक। उन्होंने कोशिश भी की और क्या करें, जो वर्णित विधि है उसी के अनुसार वो साधना करते हैं, लेकिन उनसे वो साधना करके भी उनकी उनको उपलब्धि नहीं हुई। जैसे गीता जी के सातवें अध्याय में थोड़ा सा मैं आपको सुनाना चाहता हूं, क्योंकि गीता एक ऐसा शास्त्र है विशेषकर हिंदू समाज को अवश्य स्वीकारिए, वैसे तो ये सभी प्राणी मात्र के लिए होना चाहिए, ये कोई जाति या मजहब का नहीं है। जाति मजहब तब तक बने भी नहीं थे जब गीता जी का ये श्रेष्ठ ज्ञान भगवान काल में कृष्ण जी को माध्यम से अर्जुन को सुनाया था और बाद में महर्षि वेदव्यास जी ने इसको लिपि बंद किया था, उसमें कोई जाति मजहब नहीं था, ये सत्य ज्ञान है, इसमें कोई शक नहीं। महापुरुषों ने सही कहा है कि गीता जैसा ज्ञान नहीं, लेकिन समाज को इसका कपि ज्ञान भी इसमें लिखा क्या है। हिंदू समाज में भी गीता के अनुसार 1% साधना नहीं है, इसी का परिणाम हुआ कि शास्त्र विरुद्ध साधना करने वाले भगवान ने कहा है कि ये तो दुष्ट आत्मा है, ये मुझे भी परेशान करती है और इस शरीर के अंदर पूर्ण परमात्मा उसको भी दुखी करती है, इनको घोर नरक में डालूंगा। जो शास्त्र के विरुद्ध साधना करेंगे तो मंदिर में ताली बजाए तो श्राद्ध निकाल पूजा चक्र पूजा देवता पूजा, ये शास्त्र विरुद्ध साधना गीता में लिखा क्या पढ़ के देखते हैं। फिर क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हम नरक में जाना है, हमारे पूर्वज करा करते थे ये चित्र बन गए भूत बन गए, क्योंकि वो यही साधना करते थे जो हम कर रहे हैं, इसलिए वो भूत बने, उनको श्राद्ध निकले। अगर वो सत साधना होती तो वो भूत नहीं बनते, वो सुरंग चले जाते, जैसे भी लिखा, अर्थात वो साधना ठीक नहीं थी, ये गीता प्रमाण देती है। भूत पूजनीय भूत बनेंगे, चक्र पूजनीय चक्र बनेंगे, और देवी देवताओं के पुजारी उनको बंधुआ मजदूर और नौकर लेंगे और फिर चौरासी में गधे बनेंगे, ये देवता भी गधे बनेंगे, क्योंकि अपने कर्म भोग में भोगते ये वहां से मरेंगे और फिर नरक मंडल में आ जाएंगे। इंद्र का स्वर्ग का राजा भी गधा बनता है। उस समय की बात है, मार्कंड ऋषि तपस्या कर रहे थे अपनी साधना कर रहे थे वेदों के आधार पर, और उनकी समाधि इतने समाधिस्थ हो जाते थे, काफी वर्षों से रहते थे, कि वो ब्रह्मलोक तक घूम आते थे। ब्रह्मलोक भी काल ही काल, इसको महास्वर्ग कहते हैं। इंद्र कैसे बनता है? या तो सौ यज्ञ कर दे, अश्वमेध यज्ञ 100, और उसमें 100 मन देसी घी, कुछ भंडारे में कुछ हवन में, उसमें एक यज्ञ लगे। ऐसी ऐसी 100 यज्ञ अगर कर दे तो ये इंद्र की पदवी को प्राप्त करता है। या कोई तपस्या कर ले वेदों के आधार पर, ओम नाम का जाप करता हुआ और तपस्या करके और टारगेट बनाकर कि मैं इंद्र का राज बनूं, इंद्र की पदवी प्राप्त करूं। ऐसे जैसे कि अगर कोई तपस्या करता है तो उसको इंद्र की पदवी प्राप्त होती है, और प्रेजेंट इंद्र को, वर्तमान इंद्र को पद से हटा दिया जाता है। उस इंद्र की एक और ड्यूटी होती है, यदि तेरे शासन काल में कोई दूसरा इस योग बन गया तो तेरे को हटा कर तेरे राज्य छीन कर उसको दे दूंगा, ऐसा भगवान विष्णु उसको बता देता है। पहले इंद्र को मालूम हुआ कि मार्कंडेय नाम के ऋषि बहुत जनों से तपस्या कर रहे हैं, वेदों के आधार पर साधना कर रहे हैं, इंद्र को भय बना रहता है कि कोई मेरी पदवी प्राप्त ना कर ले, उसके तप को खंड करवा देता है। उसी उद्देश्य से उसने एक उर्वशी भेजी अपनी स्वर्गलोक से, एक सुंदर औरत, सारे हार श्रृंगार करके सारी सुविधाएं उसको दे दी। उस उर्वशी ने वहां जाकर जितना सुहावना मौसम बना दिया, मौसम बनाया, ठंडी ठंडी हवा चल रही और उसमें महक भर दी, और स्वयं वहां पर उन्होंने मार्कंडेय ऋषि से 100 फुट की दूरी पर लगभग, और वहां पर अपना गाना और नाचना शुरू कर देती है। इतना सुरीली आवाज और बहुत सुंदर ढंग से वो नाच गा रही है। मार्कंडेय ऋषि की आधी आंखें खुली हैं, आधी बंद हैं। जब वो खूब नाच कूद कर थक गई, आखिर में क्या किया, निवस्त्र हो गई, नग्न हो जाती है। उसमें मार्कंडेय ऋषि कहता है, देखी ये माई हो गए, यहाँ किस लिए आई? तब वो शर्मिंदा होकर कपड़े पहन कर कहती है, हे मार्कंडेय ऋषि, आप कहाँ की साधना कर रहे हो? यहाँ के तपस्वी तो मेरे को देखकर ही बावड़ी बीच हो गए, पागल हो गए, तो ना जाने कहाँ की कृष्ण। कहता है, जहाँ मैं समाधि मेरी थी महास्वर्ग में यानी ब्रह्मलोक में, वहाँ तेरे जैसी तो उनकी पैर धोने वाली दासी थी जो वहां पर नाच रही थी, और तेरे जैसी तो साथ साथ उसके पैर धोने वाली मैं क्या देखूं तेरी तरफ, और तेरे तो सुंदर हो किसने देख देगा तेरे इंद्र के लोक में। तो वो कहती है कि हे मार्कंडेय ऋषि, इंद्र की पुत्रानी मैं ही हूं, अर्थात मेरे से सुंदर उस स्वर्ग लोक में कोई नहीं है। उससे पहले वो मार्क वो उर्वशी कह रही थी कि मैं हार गई तो जीत गया, पर एक बार तो इंद्र लोक में चल मेरी इज्जत रह जाएगी, नहीं तो मुझे वहां दो आदर करेंगे और मेरी हंसी होगी। अब मार्कंडेय ऋषि कहता है, तो जब इंद्र मरेगा जब तू किस में करेगी? कहती है, मैं 14 इंद्र वरूंगी, 14 इंद्र वरूंगी। तो मार्कंडेय ने तो मालूम था क्योंकि वो तो वेदों के ज्ञाता है, गीता जी तो या बाद में लिखी गई, और गीता में वही वेदों का जोंका जो वर्णन है, सारांश है, उसमें ये लिखा, वेदों में लिखा है कि जब कल्प अंत होगा, ये सभी प्राणी ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक के, और ये सभी समाप्त हो जाएंगे, स्वर्ग महास्वर्ग नहीं रहेगा, स्वर्ग नहीं रहेगा, एक महाप्रलय आएगी, एक कल्प के अंत में महाप्रलय होती है। ये कलप के अंत में जो महाप्रलय होती है उसमें 14 इंद्र की चतुर्युग समाप्त होता है, 1008 चतुर्युग समाप्त हो जाते हैं, एक ब्रह्मा का दिन समाप्त हो जाता है, इसको कलप बोलते हैं। तो 14 इंद्र मरेंगे जब तुम के ग्रह जी यदि मरना तो नहीं दिए, तो क्या बताती है वो ऋषि, कहती है कि मैं तो गज बनाऊंगी, अब ये जितने इंद्र में बोलूंगी ये गज बनाऊंगी। कुमार चंद्र ऋषि का ज्योति फिर मुझे क्यों ले जाती फिर गंदे स्थान पर, और फिर तुम क्योंकि मेरी इज्जत रह जाएगी गदी का इज्जत क्या, जब तू आज ही 14 इंद्र मरेगी गदी का तू आज ही है, और फिर मर कभी कभी बनेगी फिर इज्जत की भी ठेकेदार नहीं बन रही। इतने में इंद्र आ जाता है, इंद्र कहता है बंदनवाज ये परवरदिगार इंद्र की पदवी ले लो हम हार गए तुम जीत लो। मार्कंडेय ऋषि कहता रे इंद्र अरे दौड़ो तू क्या देना चाहता मुझे, इंद्र इंद्र का राज यानी स्वर्ग का राज मेरे लिए तो काम की जीत करवाई, और एक बात सुन ये मालूम है तो गदा बनेगा, और छोड़ इस राजपाट में बावड़े या तो जो सच बनती बताऊं ब्रह्म लोक की वहां पर करोड़ों कल्पों तक रहेगा तू, और ये तो मर जाएगा थोड़े से दिन में। अब इंद्र क्या कहता है, अब ऋषि वर तमन लेन जमोल की फिर देखी जाएगी, फिर तो देखेगा गदा बने पास पागल तो कुमार देखेगा डायमंड का बोरा कड़मा लसला देंगे, देखना तीर था जब संत का तो थोड़ी बीमारी मेरे आंगरी शरण में इस इंद्र से तो हजार गुण ब्रह्मा विष्णु में उसकी साधना से तो हजार गुण अच्छी, इस ब्रह्म साधना है भगवान काल की साधना है जो गीता में भी ऐसे लिखना क्या कि अर्जुन उन तीनों देवताओं की ब्रह्मा विष्णु में इसकी यानी तीनों गुणों की भक्ति छोड़ दे और इनसे जो तुम्हें लाभ मिला उसमें भूल जाए, ये पति आसार है ये बहुत अच्छे नहीं कर, अब तुम मेरी शरण आ जाए भगवान कहता है। फिर कहता है कि मेरी भी छोड़ दो बच्चे हैं कुछ ये मुक्ति चाहिए, तो फिर उस परमात्मा की सन्मत लगा तेरा फिर मरण मिलेगा, वो परमात्मा कभी सारे वो पूर्ण ब्रह्म वहां जाने के बाद फिर भी उनका मरण नहीं होता। अब यहाँ तो बिजली लाभ है आपकी कोठी हो कार हो उसने तो कह दो छोड़ दो दीदी दावत लफा भाई क्या ग्रह लोलो बगल बनती जो कि देखेंगे फिर देखेंगे उसका नौज मार लेंगे, किसी को छोड़ लो कोई राजा है उसको समझा दे भाई भगवान की भक्ति बनाई राजपाट जूठा है ना के तेरे देखेंगे या फिर देखेंगे ना या लेकर डूबेगी इंद्र को भी यही मेमरी ना मानिए बढ़ते हुए तो यहाँ के बताना चाहते हैं बंदी छोड़ कर उठा है वरदास की विवरण देकर कि जिस स्वर्ग क्या आशा लाकर तुमने स्वर्ग स्वर्ग करके मुंह का छूट छुटा लिया स्वर्ग जाएंगे स्वर्ग गए हमारे पिताजी कहते वो स्वर्ग पे कहने का भी कोई एक नए पैसे कहने जो तो सबसे बड़ा धोखा ये स्वर्ग है। तो यहाँ हम ये बताना चाहूँ आपको तो सतगुरु महाराज नहीं बताते मुंह से जो साधना तुम करने से नादान वह ठीक नहीं थी, इसी कारण तो तुम अच्छे साधक भी यहाँ तपक चलाकर बुलाए जा रहे हो, और अभी तो यह देखिए थोड़े से दिन तक भी स्वर्ग रखेगा तो महापुरुष का अधिकारी है वहां भी रख देगा, और फिर बेटा अंत में तुम समय सभी चौरासी में जाओगे और ये देवता लोग भी गधे बनेंगे और उनके पुजारी की जाएंगे तो कहाँ रहेंगे। अब वहां तो वो क्योंकि फंसे तो देखे सारी सही करती दिन थी सांझी थी महाराज हुक्म आपका हरियाण से आंधी पास गया लेकिन नहीं नहीं हम ठीक कर रहे हैं हम ठीक कर रहे हैं भाई ठीक कर रहे हो तो या तो शास्त्रों से मिलाओ उनको, शास्त्र में आपको बार बार बताता हूँ तीन लोग का ब्रह्म शक्ति साधना का गीता जी और वेद अन्य नहीं उतनी ये अपनी अपनी अनुभूति अपना सब अनुभव उन ऋषियों ने जितनी अचीवमेंट हुई जितनी उपलब्धि हुई उसका विवरण ज्यादा पूर्ण नहीं है, उपनिष्ठ भी पूर्ण नहीं है, गीता और वेद त्रिपूर्ण है, इसमें जो साधना गीता और वेद में केवल ब्रह्म प्राप्ति की है और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का विवरण जरूर है जानकारी अवश्य है लेकिन उसको पाने की वहाँ जाने की ये औपवर्तित नहीं है। पूजा की बुद्धि नहीं, वो कभी साधने पूरा किया शास्त्र को सूक्ष्म भेद से, शायद का ज्ञान जो ही सूक्ष्म भेद कहलाता है। ये सूक्ष्म भेद जो आपको पांच जन्म सुनाऊंगा और साथ में चौकी हमारे सुना दूंगा, अपने जो यहाँ के शास्त्रों का भी जानने, इसलिए साथ कंपेयर के लिए तुलना के साथ साथ ये भी सुनाना पड़ता है तुलनात्मक ढंग से, क्योंकि हम किसी जैसे जीरो का मतलब पहले देखा है, उसमें सौ का जला देंगे तो जीरो और सौ के का फिर भेद पता लग गए। ये तो मेरे में तो जीरो का भी बहुत चांदना दीप है और 40 वाट का भी बहुत बढ़िया जगमगाता दीप है और फिर सूर्य उदय हो जाए जब देखा ये 1000 की ट्यूब लग रही है, उसे खास महत्व नहीं रखती। तो कहते हैं तारा मंडल बैठते चंद बड़ाई थार उदय भया जब सूरज का तो तारे छुप जावे। रात्रि के समय तारों के अंदर चंद्रमा की बहुत शोभा होती है, बहुत ज्यादा प्रकाश नजर आवे और जब सूर्य उदय हो जावे ना चंद्रमा दिखे ना सितारे दिखे। कबीर साहब का ज्ञान जब अपना हो जाएगा फिर ये नमन दूसरे की जो साधना है, जो वेद और गीता आपको ऐसे खुशी हो जाएगी जैसे सूर्य उदय होने के बाद ये लाइट लाइट है, बहुत कुछ काम करेगी रात्रि में बिल्कुल नाचे तो ये बहुत अच्छी है, यानी वेद और गीता। लेकिन कबीर साहब के ज्ञान के सामने ये ऐसे हो जाएंगे जब कभी सही ज्ञान होगा। उसी का प्रमाण चौथे अध्याय मैंने आपको बताया, यही कहा भगवान ने कि जब तुझे पूर्ण ज्ञान हो जाएगा तो मैं सोच लिया अर्जुन। ये दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक है कि जब तुझे पूर्ण परमात्मा का तत्व ज्ञान का ज्ञान हो जाएगा, तत्व का ज्ञान होगा, इसलिए तेरी आस्था इन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश में ऐसी रह जाएगी जैसे बड़े तालाब के मिल जाने पर जो परिपूर्ण कति फुल और सुंदर जल को दिखने ये प्राप्त हो जाने पर और छोटे से तालाब जो बद लाखा पानी में जिसमें गुजारा कर रहे थे जिसी सर बैतरी उसमें रह जाएगी ना छोटे तालाब में जलाशय में, ऐसी पूर्ण जलाश्रय का प्राप्त हो जाने पर फिर श्री सरदा देख ले तो उस दो तालाब की तरफ दूसरे भी मिलेगा तो छोटा सा जब छोटा सा पानी बद लाखा पानी और जब पूर्ण फुल फ्लैग यानी पूरी लेक दिखाई देगी मिल जाएगी फिर वहाँ कोई ना जाए बिंदे पर छोटे छोटे पानी, ऐसे ही जब तक जो पूर्ण परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा अर्जुन ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो कितनी फिक्के लगेगी। ये गीता के दूसरे जाएगा 40वां श्लोक पढ़ कर देख लिए और 45वें ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा छोड़ दे भाई, ये कामने की भी कहना तीनों गुणों की साधना बंद कर दे गीता में लिख रहा था। अर्जुन ज्ञान समाज में 1% भी नहीं दे रहा था जो भगवान ने गीता में लिख रखा, तो भाई मेरा तो कलेजा नहीं बढ़कर लगा कि भगवान को है कुछ गीता हमें क्यों बता और समाज का अंग्रेज हो, इसलिए इस दास ने प्रार्थना की परमात्मा इस जीव को आपके दास को कुछ शक्ति दे मैं कुछ गुण गाऊँ आपके, तो दाता ने यह कृपा करी और इसे कुछ जीव को योग बनाए कि परम पिता पुत्र परमात्मा की हम महिमा ज्ञान के योग तो नहीं थे पर उन्होंने अपनी शक्ति प्रदान करकर ये थोड़े से गुणगान बहुत ही कम उस मालिक के हम गा पाते हैं। उसकी महिमा अंत है, उसका कोई अंत नहीं और उसकी महिमा कोई गाड़ी नहीं है। हम तो एक छोटे से चिराग समझो फिर भी धीरे निकालना बहुत हो जाएगा। अब वो सारे सुन रहे हैं क्योंकि वो तो वेदों के निर्मित ज्ञाता भी वहां जल रहे थे क्योंकि भगवान देवता ने खावा लिखना आप कहते कृष्णों को भी खावा इस तपस्या पर घूम रहा है। इतने में भगवान कहता है जब तो मैं कोई मनुष्य शरीर हो गया तो मेरी शरीर नहीं करेगा ना, मैं तुम मैं नहीं कर सकता, मैं चाहूँ तो इस सारे इस ब्रह्मांड को आग लगा दो तुम मैं ले आऊँ शरीर को, पर मैं भाई मैं कंधे बना लू या थोड़ी आप दो पुष्टि से तुम खींच रहे हो। अब इसका तरीका इसने मेरे से यही मांगा था काल में कि भगवान आप अपना ज्ञान दो मैं अपना दूंगा, जो तेरे हो गए आपके और जो मेरे मेरे ज्ञान बन गए मेरे ऐसे चले अच्छी तो भगवान शिव का जब उन्हें श्री मिल गया तो हम अवश्य आपकी पूजा करेंगे। यहाँ सतगुर बालक कहते हैं, और अभी दिखाता हूँ तुम्हारे को वो निराकार भगवान जिसको किसी से बात कर लो तो निरंकार है, वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो काल भगवान वो ब्रह्म ऐसे स्थान पर रहता है वहां कोई ब्रह्म साधना का उपासक नहीं जा सकता। वहां केवल कबीर साहब का सत्य उपासक उसकी फीस कबीर साहब की लगाने वाला भी नहीं जा सकता।